તારીખ 27/9/1998 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 377 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર
379 एक और कहता है कि ज्ञेयों के साथ संबंध नहीं है। नहीं, मैंने ज्ञान में जो जानने में आता है उसको ज्ञेय कहते हैं, जनाने योग्य को ज्ञेय कहते हैं। तो जो ज्ञान में जानने में आता है इसको ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ऐसा एक और शास्त्र में उपदेश है, कथन है। और फिर संबंध का विचार करता है, संबंध का विचार भी चला है उसमें। तो संबंध कितना और नहीं संबंध है वो कितना, प्रश्न वो है। यानी संबंध नहीं होने में आत्मकल्याण का दृष्टिकोण कौन सा है और संबंध होने में आत्मकल्याण का दृष्टिकोण कौन सा है। आत्मकल्याण मैंने आत्म शांति। इसको पारमार्थिक दृष्टिकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पारमार्थिक दृष्टिकोण है। तो ज्ञान है वो जानता है, अन्य पदार्थ उसमें जानने में आता है। वस्तु स्थिति जो है सो है, उस वस्तु स्थिति को समझ करके हमें आत्म शांति कैसे बनी रहे, यही हमारा विचार पद्धति का व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण होना चाहिए। अब समाधान क्या देते हैं देखते हैं। ज्ञेय के साथ संबंध नहीं होने पर भी स्वयं स्वपर प्रकाशक है, ऐसा उसका मैंने आत्मा का जीव का स्वभाव है। क्या कहा? ज्ञेय मैंने जो पदार्थ जानने में आता है, जो भी वस्तु जानने में आते हैं, जो भी भाव जानने में आता है, उसके साथ संबंध नहीं है। मैंने कोई फिजिकल संबंध नहीं है। ज्ञान में कुछ मिलावट नहीं होती और ज्ञान कुछ जानने योग्य पदार्थ को मिलता नहीं। जानने योग्य पदार्थ ज्ञान को मिलता नहीं और उस पदार्थ को ज्ञान मिलता नहीं, उसको कहते हैं कि कुछ संबंध नहीं है। ये वस्तु स्थिति है। ऐसा होने पर भी स्वयं स्वपर प्रकाशक है, ऐसा जीव का, ऐसा ज्ञान का स्वभाव है। स्वपर प्रकाशक मैंने क्या है कि स्वयं को भी जाने, ज्ञान स्वयं को भी जाने और ज्ञान दूसरे पदार्थ को भी जैसा है वैसा जाने। ये जरूरी नहीं है कि जिसको जाने उसको पता चले कि ज्ञान मुझे जानता है, ये जरूरी नहीं है। जैसे फोटो, कैमरा में फोटो आता है, तो जैसा सामने पदार्थ है वैसा ही फोटो आ जाता है, एग्जैक्ट आता है कि नहीं आता है। अभी तो कलर फोटो भी निकलता है ना, जैसा कलर है वैसा ही जाता है। अब जो है कि सामने वाले पदार्थ को पता नहीं है कि मेरा फोटो हो गया, पता पड़ता है क्या? नहीं पता पड़ता है, क्योंकि उसको कुछ होता नहीं। कैमरे से कोई चीज जिसका फोटो खींचा जाता है वहां जाती नहीं, और जिसका फोटो खींचा जाता है वो चीज भी कैमरा में कोई स्पर्श नहीं करती, आती नहीं, फिजिकल कोई कांटेक्ट नहीं है, बस एक ज्ञान का है। ये एक परस्पर अपने कारण से ये स्वभाव है। जीव का जानने का स्वभाव अपने कारण से है, पदार्थों का जनाने का स्वभाव अपने कारण से है। जानने के स्वभाव को ज्ञान शक्ति कहते हैं और जो जनाने का स्वभाव है उसको ज्ञेय शक्ति कहते हैं, प्रमेय शक्ति कहते हैं। शास्त्र में आता है कि मेरु पर्वत, स्वर्ग लोक आदि दूर क्षेत्र में स्थित पदार्थ ज्ञान में ज्ञात हो, वहाँ कहाँ प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होते हैं और स्वयं कहाँ उस क्षेत्र में जाता है, केवल ज्ञान में या अवधि ज्ञान में, दोनों में दूर क्षेत्र में रहे हुए पदार्थ ज्ञान में आ जाता है, जानने में आ जाता है। तो ज्ञान तो वहाँ जाता नहीं, न कोई पदार्थ ज्ञान में आता है, बहुत दूरी है, अरबों के अरबों योजन, असंख्य योजन की दूरी होती है, कितनी असंख्य योजन, किलोमीटर नहीं, माइल नहीं, गांव नहीं, योजन, दो डेढ़ किलोमीटर का करीब करीब 1.6 किलोमीटर का एक माइल है, दो माइल का एक गांव है, गांव हमारे यहाँ गांव बोले हैं, एक गांव, बे गांव, चार गांव, चाहिए गांव बोलते हैं, कोश बोलते हैं आपके यहाँ हिंदी में, कोश बोलते हैं, और चार कोश का एक योजन होता है। मैंने करीब 6.5 किलोमीटर का एक योजन हुआ, ऐसे असंख्य योजन का दूरी होता है स्वर्ग का और मेरु पर्वत का, इतना दूरी होने पर भी ज्ञान जान देता है। आप स्वयं ज्ञान रूप आत्मा है, ज्ञान रूप परिणमता है, ज्ञान में शक्ति है ऐसे जानने की। दूर या निकट रहे हुए पदार्थों को अपने निर्मल ज्ञान में जानने का स्वभाव है, स्वभाव मैंने शक्ति, शक्ति है, परंतु वे निकट स्थित हो तब ऐसा लगता है कि मुझ में इसका प्रतिबिंब पड़ता है, निकटता में लगता है कि कुछ ज्ञान में आ जाता है। जैसे हम मिठाई खाते हैं और कोई मिर्च खाते हैं तो जाल लगती है, मिठाई खाते हैं तो मीठापन लगता है, हाँ, तो जैसे कोई ज्ञान में आ गया ऐसा अनुभव होता है। शरीर की पीड़ा होती है तो जैसे कोई आत्मा में पीड़ा होती है, आत्मा में कुछ आता है ऐसा लगता है, और कोई अच्छा बुरा सुनने में लगता है, जैसे कोई प्रशंसा करते हैं तो अच्छा लगता है, तो जैसे कोई अपने को इफेक्ट होती है शब्दों की, कोई निंदा करता है तो बुरा लगता है, तो कुछ हमको इनके शब्दों की इफेक्ट होती है ऐसा लगता है, ऐसे अफेक्टेड होते हैं, इफेक्टेड होते हैं। तो कुछ आत्मा में ज्ञान में कुछ आता है, कोई असर पहुंचाता है ऐसा लगता है, वास्तव में जानने के सिवा वो भी निर्लेप रूप से लेपायमान हुए बिना जानने का ज्ञान का स्वभाव है। इसका एक और अच्छा दृष्टांत वो है कि हम जीव से स्वाद लेते हैं, इस वक्त लगता है कि वहां से कुछ हमारा कुछ जो स्वाद का रस है वो अंदर उतरता है, लेकिन जीव का स्वभाव भी कोरा रहने का है, कुछ समय के बाद वहां कोई स्वाद नहीं रहता, कितना भी कड़वा स्वाद लिया हो, कितना भी मीठा लिया हो, कितना भी जाल लगी हो, तिखा लगा हो, कितना भी लगा हो, कुछ भी लगा हो, कुछ मिनटों के बाद वहां कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो एक स्वाद लगने के बाद दूसरा लग नहीं सकता। अगर लग जाता तो, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, तो दूसरा दूसरा अलग अलग स्वाद अलग अलग समय में स्वाद लेने में आता है, अनुभव में आता है। वैसा ही ज्ञान का है कि ज्ञान कोरा ही रहता है। बहुत कुछ लगने पर, बहुत कुछ देखने पर, बहुत कुछ ज्ञान में आने पर भी ज्ञान हमेशा हमेशा कोरा ही रहा है। अगर ऐसा नहीं रहता तो दूसरा ज्ञान में आ नहीं सकता। वैसा ही दर्पण में है, दर्पण ही कोरा रहता है कितनी भी चीज आ जाए। ये जो पान के गल्ले होते हैं ना, पान की दुकान होती है, बड़ा कांच लगा रहता है वहां दर्पण, पूरे दिन सारे ट्रैफिक उसके प्रतिबिंब होते रहते हैं। मार्केट एरिया है, ट्रैफिक वाला रोड होता है और उस पर भी पान की दुकान लगी होती है, सारे दिन उसमें प्रतिबिंब आते हैं, जाते हैं, आते हैं। अरे से को कांच को कितना लेना देना हुआ, इसके कारण से कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं होता। कभी सारे दिन इतना हुआ तो वो कांच खराब हो गया, और वो कांच पड़ा रहा तो अच्छा रहा, ऐसा भी नहीं है। तो कांच की जो क्वालिटी है वही रहती है। वैसा ज्ञान में कितना भी नहीं हो, केवल ज्ञान में तो लोक सारा विश्व आ जाता है, चौथ ब्रह्मांड स्वर्ग से लेकर के पूरा पूरा और अनंत आकाश, फिर भी ज्ञान को कुछ नहीं होता। क्योंकि ज्ञान की शक्ति ऐसी है, निर्लिप रहने की शक्ति है, जानना सबको और निर्लिप रहना भी सबसे। इसलिए ज्ञान को असंग तत्व बोला है, तो किसी से संग नहीं करता वो। निकट स्थित हो तब ऐसा लगता है कि मुझ में इसका कुछ प्रतिबिंब पड़ता है या कुछ असर आता है, कुछ इफेक्ट आता है। ऐसा भ्रांति के कारण से लगता है। भ्रांति माने क्या? कि ज्ञान का जो असली स्वरूप है उसका अनुभव नहीं करके अन्यथा अनुभव करना, विपरीत अनुभव करना, उसको कहते हैं भ्रांति। भ्रांति मैंने गलत अनुभव, उसको कहते हैं भ्रांति। लगता है कि हमको, हमारे में कुछ होता है, हमको कुछ असर पहुंचती है, ये जीव की भ्रांति है। जिसको और उस भ्रांति के कारण से आकुलता होती है। आकुलता माने दुख होता है। जिसको दुख मिटाना है उसको ज्ञान का असली स्वरूप समझना और अनुभव करना होता है कि देखो मैं तो निर्लिप रहता हूँ, कोई भी चीज जानने में आए मुझे कोई इसका असर होना कि मेरी भ्रांति है, मुझे दुखी नहीं होना है, तो मेरी निर्लिपता को मैं अनुभव करूँ, मेरी शांति सहज रूप से स्वयं बनी रहेगी। ये वैज्ञानिक तौर से शांति और अशांति का रूट कॉज है, मूल कारण वो है। आज विश्व में सारी मानव जात को अशांति क्या और इसका रूट कॉज क्या है वो बात समझ में नहीं आई। ये तो एक जैन शास्त्र है ऐसे जिसमें उसका साइंस है। देखो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, वो तो 15 साल की उम्र पहले पहले ही पढ़ना छोड़ दिया है। 13-14 साल से उनमें क्या पढ़े, उसके पहले ही छोड़ दिया। 15 साल से तो वो निवृत्त होगी आत्मकल्याण के लिए, फिर भी विज्ञान कितना जानने में है। अनुभव ज्ञान से विज्ञान को कितना जानती है। ज्ञान का विज्ञान क्या है, और ज्ञान में जनाने युग पदार्थों का विज्ञान क्या है, उसका संबंध क्या है, वैज्ञानिक संबंध क्या है, और उसमें शांति अशांति का पारमार्थिक दृष्टिकोण कौन सा हो सकता है। इतने हद तक वो बात की चर्चा चल करते हैं यहाँ पे। ऐसा भ्रांति के कारण लगता है वह उसकी भूल है, और भूल से कोई चलता है तो उसका दंड भी भूल का भोगना पड़ता है, वही अशांति है, वही दुख है, जिसको हम दंड कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैन शास्त्र में जो भी जीव का और दूसरे पदार्थ का जो विज्ञान बताया गया है, वो सही ज्ञान उसका करने से शांति अपने आप बनती है, और अशांति अब तक बनी है इसका कारण है कि हमने वो बात जानी नहीं, समझी नहीं। हम क्या है, दूसरे पदार्थ क्या है, हमारा कितना संबंध है, कितना संबंध नहीं है, वो विषय हमने कभी जाना नहीं, जानने की चेष्टा भी की नहीं। और हमें सुख चाहिए, फिर भी हमें सुख चाहिए, तो जो भी प्रसिद्ध सुख के उपाय हैं इसके पीछे हम लग जाते हैं। हाँ, 17 साल के पहले पहले एक काव्य लिखा है, पद लिखा है कि बहु पुण्य केरा पुंज थी, शुभ देह मानव नो मिलो। मनुष्य देह बहुत पुण्य से मिलता है, फिर भी भवचक्र का एक फेरा भी कम नहीं किया हमने। एक अफसोस की बात है कि हमने इस विषय में सोचा नहीं। हमारे सुख दुख के विषय में जितनी गहराई से और जितनी गंभीरता से हमें सोचना चाहिए, उतनी गहराई से और गंभीरता से हमने नहीं सोचा है। ये एक करुणता है, एक ट्रेजेडी है कि ऐसा अनंत काल से बन रहा है, और अभी भी हमारा ध्यान नहीं गया तो अनंत काल बनता रहेगा। ऐसा भ्रांति के कारण लगता है वो जीव की भूल है, उसकी मैंने जीव की भूल है, अपनी भूल है वो। वह क्षोभम ज्ञान की परिणति है, वह एकत्व है, इसलिए ऐसा लगता है। भूल क्यों होती है? एक तो जीव को क्षोभम ज्ञान है, इसलिए पर पदार्थ जानने में आता है। अपना निर्लेप स्वभाव मालूम नहीं होने से हम उसमें लेपायमान होते हैं, वही हमारी भूल है। ये चीज हमको अच्छी लगती है, ये चीज हमको बुरी लगती है, अच्छी नहीं लगती है। हम तो जानने का एक तत्व है, आत्म तत्व है, वो जानने का ज्ञान तत्व है, इसके सिवा हम कुछ है ही नहीं, हमको कुछ लेना देना है ही नहीं। कैमरा में तो जो फिल्म है वहां तो स्थायी फोटो रहता है, यहाँ तो फोटो भी स्थायी नहीं रहता है, वो तो दर्पण में जैसे फोटो चला जाता है वैसे उसमें ही चला जाता है। दर्पण जितना निर्लेप है उतना ही ज्ञान निर्लेप रहता है। और देखिए, अनुभव कीजिए कैसा हुआ कि नहीं हुआ। हमने मौसम में अच्छी से अच्छी आम खाई, फलों का राजा आम बोला जाता है, और ये बम्बई की साइड में रत्नागिरी का बेस्ट क्वालिटी आता है, जो एक्सपोर्ट होता है अरेबियन कंट्रीज में, खास करके गल्फ कंट्रीज में वो ज्यादा जाता है। अच्छी से अच्छी क्वालिटी आती है और लोग खाते हैं, हीरे के व्यापारी बहुत खाते हैं मुंबई में, जो है डायमंड के व्यापारी, आपस में चर्चा कर रहे हैं आपका बजट कितना है, कितना होता है मालूम है, लाख लाख रुपए का आम का बजट होता है उन लोगों का, कितना, 2-3 महीने में 1 लाख रुपए के आम खा जाते हैं वो लोग। 50 रुपए का एक पीस आता है तो वो लोग ले लेते हैं, 2 डजन रख दो, 4 डजन रख दो, पूरा पेटी रख दो, क्यों, अच्छा लगता है। और खाने के बाद उसका स्मरण भी आना मुश्किल है, स्वाद का कुछ समय के बाद उसका स्मरण भी होना मुश्किल हो जाता है। तो कितना भी हम मान ले के हम उसमें लेपायमान हो गए, लेकिन स्वभाव छूटता नहीं, स्वभाव मिटता नहीं। ज्ञान एक ऐसा जीव का अनुभव पूर्ण, अनुभव सिद्ध भाव है कि जो कभी अपना स्वभाव को छोड़ता नहीं। यहां से आत्मा का ज्ञान होता है, ज्ञान से ही आत्मा की पहचान होती है, ज्ञान से ही आत्मा का अनुभव होता है। और आत्मा में शांति की प्रॉपर्टी है तो ज्ञान से ही शांति का अनुभव होता है, आत्मा में सुख भरा है तो ज्ञान से ही सुख का अनुभव होता है और वो स्थायी होता है, वो स्थायी रहता है। जैसे हमारे अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा है, वो सादी अनंत परमानंद में विराजमान रहेंगे। सादी अनंत मैंने आगामी सभी भविष्य काल के लिए, उसकी आत्म शांति, अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत शांति, जिसका स्वाद अमृतमयी है। कैसा है? अमृतमयी है, छूटेगा नहीं। क्यों? तो उन्होंने उसको उजागर किया, उसकी परमानेंट प्रॉपर्टी है, वो परमानेंट भोगते हैं उसको। भ्रांति से हम हमारे संपत्ति को, हमारी शक्तियों को भूल गए हैं। वो उसके भान कराने के लिए इस स्वाध्याय सत्संग निमित्त है। क्या है? निमित्त है। और वो निमित्त भी उसको है जिसको उसकी प्राप्ति की भावना होती है, उसको निमित्त है, सबों को नहीं है। जो भावना के साथ, प्राप्ति की भावना के साथ सत्संग स्वाध्याय में शरीक होते हैं, उपस्थित होते हैं, उसको वो बात भान में आती है। दूसरे बैठते हैं फिर भी उसको भान में नहीं आती है, ये कारण है। तो कहते हैं कि अगर हमें वास्तविक सुख शांति चाहिए तो हमारे में से ही उसको उत्पन्न कर लेना चाहिए, हमारे में वो चीज भरी है। ये हमको कौन बताते हैं? जिसने ऐसा प्रयोग करके अनुभव सिद्ध, अनुभव से प्राप्ति किया है, वही बताते हैं। वही ज्ञानी है, वही गुरु है, वही हमारे भगवान है, वही हमारे परमात्मा है, जिन्होंने ये हमको बताया। कहते हैं कि ज्ञान की जो परिणति, क्षोभसम ज्ञान, मैंने खुला हुआ ज्ञान, क्षोभसम शब्द है, वो शास्त्र भाषा का है। अपन सादी भाषा में बोलते कि जो ज्ञान खुला हुआ है, किसी को ज्यादा खुला हुआ है, किसी को कम खुला हुआ है। कोई कहते हैं ये बहुत बुद्धि वाला है, वो कम बुद्धि वाला है, बुद्धि मैंने ज्ञान। तो जो जिसको जितना ज्ञान खुला हुआ है, उससे वो दूसरे दूसरे पदार्थ को अधिक जानता है, ज्यादा जानता है। लेकिन भ्रांति से एकत्व करता है, लिपायमान होता है कि मेरा इसके साथ उतना घनिष्ठ संबंध है। जैसे शरीर से, शरीर को जानता है, शरीर के रोग को जानता है, शरीर शरीर के रोग को नहीं जानता, शरीर की तंदुरुस्ती को ज्ञान जानता है, शरीर नहीं जानता मेरे में कितनी तंदुरुस्ती है, लेकिन मानता है कि मेरा घनिष्ठ संबंध है, बहुत संबंध है, मैं तो एक मेक हूं। शास्त्र में इसका दृष्टांत दिया है, क्षीर निर्वत, क्षीर मैंने दूध, नीर मैंने पानी, दूध में पानी कोई मिलाते हैं तो दूध का जितना क्षेत्र होता है उतना ही पानी का क्षेत्र बन जाता है। जिस बर्तन में जैसे बर्तन में दूध रहता है बस उसी आकार में पानी भी रहता है वहाँ। फिर भी पानी कभी दूध बनता नहीं, दूध कभी पानी बनता नहीं। अगर बनता होता तो पानी आज मिलता नहीं लोगों को, या दूध पानी के भाव में मिलता, दो में से एक हो जाता। लेकिन दूध का पानी कभी बनता नहीं, पानी का दूध कभी बनता नहीं, वो अलग हो सकता है और अलग किया भी जाता है। वो खेवा बनता है ना, मावा बोलते हैं अपन गुजराती में, मावा बोलता है हिंदी में, खेवा बोलते हैं। क्या कैसे बना वो, दूध में से पानी निकाल दिया, दूध का दूध रह गया, भूल गया कि खेवा बन गया। बना क्या, पानी का दूध बना, दूध का पानी नहीं बना। वैसे शरीर और आत्मा का संबंध दूध और पानी के बराबर है। जितना आकार हमारा आत्मा का है उतना ही आकार हमारा शरीर का है। हाइट है, लंबाई है, चौड़ाई है, डेप्थ है, वो सब उतना ही है। फिर भी शरीर शरीर है, परमाणु की रचना है, और जीव जीव है, वो सचेतन पदार्थ है। चेतन अचेतन नहीं होता, अचेतन सचेतन नहीं होता, और दोनों अलग अलग हो जाते हैं। जब अलग हो जाते हैं तो शरीर को मुर्दा बोला जाता है, और कितना भी जतन किया हो शरीर का पूरी जिंदगी, जल्दी से घर से बाहर निकालो, जल्दी से निकालो, देरी मत करो, ये बात हो जाती है। जब चेतन चला जाता है तब, जब चेतन था तब चेतन का वैल्यूएशन किया नहीं, इवैल्यूएट नहीं किया, डीवैल्यूएट किया। जब हमारे शरीर में चेतन था तब हमने हमारा वैल्यूएशन किया नहीं। शरीर की सुविधा, शरीर की अनुकूलता के लिए पूरी जिंदगी हमने खर्च कर दी, मैंने पूरा आयु बिगाड़ दिया, खर्च कर दी मैंने, बिगाड़ दिया नहीं, हमने जुआ खेला है और हार गए हैं हम। क्या हुआ है सुमित जी ने, क्या बोला, नरभव ने हारी जगो है, लक्ष्मी ने अधिकार वधता सू वधू ते तो कहो। मैंने लक्ष्मी, मैंने पैसा बढ़ गया, अधिकार मैंने सत्ता मिल गई, प्रेसिडेंट हो गए इंडिया के या अमेरिका के, हैं क्या बढ़ गया आत्मा में, आत्मा में कुछ आया नहीं। सू कुटुंब के परिवार सी वधवापणु, ए नय ग्रहो, न्याय से देखो तो सही, नेत्र खोल करके देखो तो सही। वधवापणु संसार नु भ्रमण बढ़ा दिया, नरदेह ने हारी जवो, मनुष्य भव, नरदेह मैंने मनुष्य भव को जुआ में हार गया। ज्ञानी की नजरों में अच्छे अच्छे बुद्धिमान जुगारी देखे जाते हैं क्या? देखो ज्ञानी की नजर क्या है, है? कि देखो ये लोग मनुष्य भाव को हार जाते हैं, दाव खेलते हैं पैसा कमाने में, परिवार बढ़ाने में, सत्ता जुटाने में, और मर जाते हैं, कुछ हाथ में आता नहीं। और शरीर को इतना जतन किया, निकालो जल्दी से निकालो, जल्दी से निकालो, देर मत करो वरना दुर्गंध हो जाएगी। हाँ, उठाने में वजन, अभी आजकल तो उठाते नहीं है, ले जाते हैं एम्बुलेंस में, और आसाराम जी है ना जो सारे हिंदुस्तान में आजकल सत्संग कराते हैं, आसाराम जी करके एक संत आते हैं, बहुत एडवर्टाइज होती है, कलकत्ता में भी इसके फोटो देखते हैं, गांव गांव में यूपी में, बंगाल में, सब जगह जाते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात किया है कि देखो तो सही, एक आदमी था, पूरी संपत्ति घर की उसने इकट्ठी किया, पूरे परिवार बढ़ाए, बहुत सत्ता बढ़ाई, सब कुछ बहुत किया, वैभव बढ़ गया। मर जाने के बाद उसके मुर्दे को उतने जल्दी से निकालने की बात चल रही थी, ताजुब हो गया हमको, ऐसा करके बोलते हैं। फिर क्या हुआ कि जला दिया तो इसकी हड्डी को ले आते हैं कोई समुद्र में या कोई गंगा आदि अच्छी नदी में, पवित्र नदी में डालने के लिए, अस्थि बोलते हैं। तो कुछ हड्डियां मिलती है, मुट्ठी भर ले आते हैं, लेकिन घर में नहीं लाते। हैं क्या बोलते हैं? अशुभ, अशुभ बोलते हैं। हाँ, जिसको उतना खिलाया पिलाया, अच्छा हड्डी बनाया, उसको अशुभ बोलते हैं। घर पे नहीं रखते, घर के बाहर जो पेड़ होता है वहां टांग देते हैं। कैसेट सुना था तो आपको पिताजी है ना, उन्होंने भेजा था हमको, एक कलाक एक घंटा फिर ट्रेन में ले जाते हैं उसको गंगा में पधराने के लिए। तो ट्रेन में भी वो पैर के नीचे जो डिब्बा रखते हैं, हैं सामान वहाँ रखते हैं, वहाँ रखते हैं। इंसल्ट नहीं होता है क्या इसका? इतना बड़ा आदमी था, अगर कोई पूछता है कि इसमें क्या रखा है तो लात मार करके अंदर रखते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करके वो छिपा देते हैं। उसने इतना एलोबरेट किया है इस बात को, इतना एलोबरेट किया है कि जीव को संसार के प्रति वैराग्य नहीं आता हो तो आ जाए वो। अच्छा ऑरेटरी बहुत फाइन है, फाइन ऑरेटरी है तो हमने देखा, उसने बहुत डिटेल से वो बात एक घंटा तक किया है। और वहाँ भी कैसे पधराते हैं, कैसे करते हैं, सब बात का, वो तो अपने को जानते नहीं है इतना, वो लोग तो जानते हैं सब इसकी विधि विधान को। बहुत तो वैराग्य में ही बात किया है। आशय वो है कि जीव व्यर्थ परिश्रम कितना करता है और इतना मनुष्य भव मिलने पर भी उसको सार्थक नहीं करता है, निरर्थक कर देता है, ये इसका आशय है कहने का। तो क्या है कि ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो एकत्व है, इसके साथ वो एकदम गाढ़ संबंध कर लेता है, जैसे शरीर से कर लिया, इसलिए ऐसा लगता है कि मानो यह सब मुझ में आ रहा है, शरीर मेरा है, आत्मा में है, आत्मा शरीर में है, शरीर में आत्मा है, जैसे दूध में पानी है, पानी में दूध है, बोला जाता है, तात्विक रूप से है ही नहीं, दूध में पानी डाला, बोला जाता है, दूध में पानी है, बोला जाता है, वास्तव में दूध दूध में है, पानी पानी में है, ऐसे शरीर में आत्मा है, वास्तव में आत्मा आत्मा में है, शरीर शरीर में है। ये एकत्व लगता है, क्या एकत्व है? वो लगता है मानो ये सब मुझ में आ रहा है और मैं भी कहीं बाहर चला जाता हूँ, ऐसा लगता है। सामने इसको चीज देख करके इफेक्ट होता है ना, तो जैसे मैं वहाँ चला गया, जैसे हम इधर स्वाध्याय कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब करते हैं तो हम वहाँ चले जाते हैं कि देखो ये कौन गड़बड़ करता है, हमको यहाँ डिस्टर्ब होता है। वास्तव में आपका ध्यान वहाँ गया, आप तो इधर ही है लेकिन ध्यान वहाँ गया, तो कहेंगे कि आप ध्यान अपने में रखो, जरा गौर से सुनो, गौर से विचार करो, क्या चलता है बार मालूम नहीं पड़ेगा। बहुत शुरू के दिनों में हमको जैन शास्त्र पढ़ने का इंटरेस्ट बहुत हुआ कि अपने सुख दुख की वैज्ञानिक बातें इसमें रही है तो जरा देखे तो सही। तो हमारे घर में क्या था उस वक्त, एक टेबल कुर्सी पर बैठ करके हम पढ़ रहे थे और हमारे टेबल के ऊपर ही उन जमाने में रेडियो रखते थे, अब टीवी तो था ही नहीं उस जमाने में, बहुत साल पहले की बात है, 40-45 साल पहले की बात है। रेडियो छोटा भाई है उसको रेडियो का बहुत शौक है, बहुत शौक था, तो घर में बूट चंपल निकालने के पहले पहले रेडियो चालू करता था, बाद में बूट चंपल निकालता था, और इतना शौक था, बोला कि जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मेरे एक एक कमरे में एक एक रेडियो रहेगा, इतना मेरे को सुनने का शौक है। तो हमेशा वो घर में होता तो चालू ही रहता है। अब सिर पे रेडियो हो और हम पढ़े तो डिस्टर्ब नहीं होवे क्या? हाँ, गाना बजता रहे कुछ भी, उनका वो मुख्य तौर से तो गाना ही बजाते हैं वो लोग। तो हम एक दिन पढ़ते थे, कोई मुमुक्षु आ गए, अरे ये तो आपका रेडियो बज रहा है, आप नीचे पढ़ रहे हो, तो ये क्या पढ़ने की कोई तरीका होता है क्या? मैंने को हमको तो मालूम ही नहीं है कि रेडियो बज रहा है, हम तो हमारे पढ़ाई में इतने लगे हैं कि हमको मालूम नहीं रहता है कि रेडियो कब चालू हुआ कब बंद हुआ। अब कौन किसको डिस्टर्ब करता है बताइए, हम खुद ही डिस्टर्ब होते हैं अपने आप से, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर हमारी लगन पढ़ाई में है, हमारी एकाग्रता कंसंट्रेशन है, हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अगर हमारा कंसंट्रेशन नहीं है तो लगता है कि ये बगल वाला वो करता है, दूर में से आवाज़ आती है, इधर वो होता है, कुत्ता भौंकता है, ये होता है वो होता है। देखो प्रयोग कैसा है, ये अपने आप को समझने का एक साइंस है, अच्छी तरह से हमको अपने आप को समझना चाहिए। जब भी हमको मालूम पड़ेगा कि हमारी सुख शांति और हमारी अशांति का कारण कहाँ रहा है, जैसे सुख भीतर में से आता है वैसे दुख भी भीतर में से आता है, कभी दूसरे पदार्थ में से दुख नहीं आता है न कभी किसी दूसरे पदार्थ में से सुख आता है, हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता। क्यों? कि दूसरा पदार्थ तो सुख दुख देने के लिए समर्थ ही नहीं है, इसमें ऐसा कोई गुण धर्म नहीं है, कहां से आएगा कहां से होगा। इसलिए एक सिद्धांत ज्ञानियों ने प्रसिद्ध किया है कि जब भी जीव को दुख होवे, अशांति होवे, आकुलता होवे, तब सोच लेना चाहिए कि कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, मेरी कहीं भ्रांति मुझे दुख दे रही है, सिवा कुछ नहीं बात। मिसकॉन्सेप्ट है ये, हमने जो आर्टिकल लिखा है साइंस और रिलीजन का, उसमें मेन बात वही लिखी है कि दुख का कारण मिसकॉन्सेप्ट है, सुख का कारण सही अभिप्राय है। सबसे पहले अभिप्राय को ठीक करो, वस्तु के स्वरूप का ज्ञान करो, वस्तु का विज्ञान समझो, अपने अभिप्राय को ठीक करो, आपको शांति लानी नहीं पड़ेगी, भीतर में से आने लगेगी। आपको दुख मिटाना नहीं पड़ेगा, सहज दुख पैदा ही नहीं होगा, और वो भी हर हालत में। कुछ लेने देने का सवाल नहीं है, सही वस्तु स्वरूप समझो, अपना स्वरूप समझो जीव का, और अपने अगल बगल के जितने भी सचेतन अचेतन पदार्थ है उसका स्वरूप समझो कि हमारा उसका कितना संबंध है, कैसा संबंध है, कहाँ तक संबंध है, बस शांति अशांति का आपको पता लग जाएगा। ये बात अनेक पड़खों से, अनेक पहलुओं से ज्ञानियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे तीर्थंकरों ने बताई है, और जिस ग्रंथों में बताई है वही हमारी सच्ची वारिस की संपत्ति है। हमारे पास होने पर भी हम लावारिस हैं, ये हमारी एक ट्रेजेडी है। बाकी उन लोगों तो बता के चले गए, अच्छा हुआ कि उन्होंने ये बात ग्रंथारूढ़ की, वरना तो उसके ज्ञान उसके पास रह जाता है, वो चले जाते हैं, आज तो है ही नहीं वो लोग, सिद्धालय में विराजमान हो गए। तो ये उन लोगों ने अच्छा काम कर लिया कि ग्रंथों में वो बात बढ़ाई रखी। उतना ही नहीं, उनके निमित्त से ज्ञानियों की परंपरा चालू रही। दो बात बना है उन लोगों के निमित्त से, दो बात बना है, एक तो सत्शास्त्र मिले अपने को, और दूसरे उनके निमित्त से जो भी दूसरी आत्माएं ज्ञानी हुए उनका लाभ समाज को मिलता रहा। समाज को मैंने जो भी जिसकी होनहार अच्छी है, जिनका भविष्य उज्जवल है, उनको भावना होती है, वो इस अपने आत्म शांति के लिए लालायत होते हैं और वो ये प्रयत्नशील होते हैं और उनको अपनी शांति मिल जाती है। इतना उपकार उन लोगों से हुआ है, इसलिए हम लोग उनकी पूजा करते हैं, यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। पूजा करने में उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो हमारी कोई पूजा करे, वो तो वितराग है, आंख उठा के भी सामने नहीं देखते। देखिए हमारे भगवान की प्रतिमा को देखिए, ऐसे ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं, बार योजन में इनकी धर्म सभा होती है जिसको समोह शरण हम कहते हैं। कल देखे ना सोनगढ़ में राउंड होता है, इसका जो डायामीटर है 24 माइल का होता है, 24 योजन का होता है, बार योजन होता है ना, बार गांव नहीं त्रिज्या, 24 गांव का डायामीटर होता है डबल। उसमें मनुष्य बैठते हैं, कुछ पशु पक्षी भी बैठते हैं जो मन वाले प्राणी हैं, और देवलोक देवी देवियां भी बैठते हैं, मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों बैठते हैं और प्रिंच में भी बैठते हैं, सब पशु पक्षी बैठते हैं जो समझते हैं मन से बुद्धि से, बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं। और वहां माइक लगाने नहीं पड़ते, कोई वायरिंग नहीं है, वहां दिव्य ध्वनि वातावरण में पैदा होती है और सबसे एक सरीखा आवाज मिलता है। नजदीक वाले को बहुत तीव्र आवाज मिले, दूर वाले को बहुत धीरा आवाज मिले, वो नहीं है, पहला बैठता है छिल्ला बैठता है आखिर में, सबको एक सरीखा सुनाई देता है और सबको अपनी भाषा में, वाणी अनक्षरी होती है, ओमकार नाद ओ ऐसा चलता है, सैकड़ों भाषा में उसका ट्रांसलेशन अपने आप अपने में होता है, बाहर में नहीं होता है, वरना तो घोटाला हो जाए कि यहाँ हिंदी समझने वाला, वहां संस्कृत समझने वाला, वहां पशु भा समझने वाला, तो सबको डिस्टर्ब हो जाए, अपने अपने में अपनी भाषा में समझ में आता है कि मुझे ये ऐसे कहते हैं, भगवान मुझे ऐसा समझाते, भगवान मुझे ऐसा कहते हैं, जबकि भगवान तो आंख उठा के भी देखते नहीं कि आगे कौन बैठा है पीछे कौन बैठा है, फिर भी इसके ज्ञान में पूरा विश्व है, केवल ज्ञान है ना, सिर्फ समोसरण नहीं है, 14 ब्रह्मांड, आंख नहीं उठाते हुए भी इसके ज्ञान में झलकता है, प्रतिबिंबित होता है, लेकिन वितराग है, मोह नहीं है, कोई अच्छी बुरी चीज लगती नहीं है, बस वो अपने ध्यान में, अपने ज्ञान में, अपनी शांति में, अनंत शांति में डूबे हुए रहते हैं। क्या डूब जाते हैं? सुख शांति में बाहर नहीं निकलते। बाहर निकलना ही अशांति है। समुद्र में लीन हो जाना, डूब जाना, वही शांति है। ये ध्वनि सुन करके उनके जो प्रमुख शिष्य होते हैं, उनको हम गंधर्व बोलते हैं, आचार्य शिरोमणि, आचार्यों में वो प्रमुख है, वहां वो ग्रंथारूढ़ करते हैं, वो आगम बनाते हैं, और इस पर से अनेक ज्ञानी होते हैं, अनेक मुनि होते हैं, और जो भी जिसकी हुनर अच्छी है उसको भावना होती है और वो समझ लेते हैं बात को, और अपना कल्याण करके वो भी सिद्धालय में चले जाते हैं हमेशा के लिए। हाँ हाँ, गुरुदेव का भावी तीर्थंकर का योग है और बहनश्री का भावी गंधर्व का योग है। सूर्य कीर्ति नाम के तीर्थंकर महाविद्य क्षेत्र में धातु की खंड में होंगे। वो बात आई है सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि में, पूर्व भूम में बहनश्री ने सुनी है और उसका स्मरण अभी आया है कि इस भूम में आया है। गुरुदेव का भी सुना, अपना भी सुना था, वो बात उन्होंने प्रसिद्ध की, तो हमको एक अच्छा मौका मिला कि चलो ऐसे महान आत्माओं का एक प्रत्यक्ष योग हमको मिला, ऐसा जिसका परम सत्संग हुआ और कई लोगों को जिसकी हुनर अच्छी है उसको आत्म शांति का लाभ भी मिला। तो उस तरह से इस प्रश्न में आत्मा की असंगता और निर्लिप्तता को ज्ञान के माध्यम से बताई गई है। ये 377 प्रश्न समाप्त होता है और अपना समय भी समाप्त होता है। आगे का विषय कल के स्वाध्याय में लेंगे। ज्ञान नो संबंध व्यवहार थी कहवामां आवे छे। निश्चय थी ज्ञान अने ज्ञेय नो कोई संबंध नथी। ज्ञान स्वभाव थी ज असंग अने निर्लेप तत्व छे। पारमार्थिक दृष्टिकोण में तेनी मुख्यता छे। ज्ञान अने ज्ञेय नो व्यवहार संबंध ज्यां पण कहेवामां आव्यो छे त्यां पण बन्नेनी भिन्नता दर्शावानो पारमार्थिक आशय रहेलो छे। आ વિષય ને પોતાના પરિણમનના અનુભવથી સમજવો ઘટે છે, કે જેથી યથાર્થ સમજણ થાય.